एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं विलियम बी अर्विन की किताब द स्टोइक चैलेंज की गहराइयों में।
हाँ नमस्कार, और ये किताब देखिए उन लोगों के लिए बहुत काम की है जो अक्सर सोचते हैं कि भाई जब जिंदगी मुश्किलें पेश करती है तो हमारे हाथ में असल में होता क्या है।
सही बात है,
ये स्टोइक फिलॉसफी को ना आज के जमाने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह पेश करती है ताकि हम ज्यादा शांत रह सकें, ज्यादा मजबूत बन सकें।
और इसकी जरूरत तो आजकल मतलब हम सबको महसूस होती है ना?
बिल्कुल,
इतना तनाव है, अनिश्चितता, लगता है जिंदगी हर मोड़ पर कोई ना कोई चुनौती खड़ी कर देती है।
तो ये किताब हमें सिखाती है कि मुश्किलों से भागना नहीं है,
हाँ, बल्कि उन्हें अपने विकास का, अपनी ग्रोथ का जरिया बनाना है। और सबसे अहम बात जो मुझे लगी, ये हमें जीवन की चुनौतियों में हमारी भूमिका, रोल, मतलब हम असल में क्या बदल सकते हैं,
सही,
और हमारे लक्ष्य, गोल, यानी हमें फोकस किस चीज पर करना चाहिए, इसको नए सिरे से समझने में मदद करती है।
बिल्कुल।
और इस नजरिए को सामने लाने वाले हैं विलियम बी इरविन। वो क्या कहते हैं, फिलॉसफी के प्रोफेसर एमेरिटस हैं राइट स्टेट यूनिवर्सिटी में।
अच्छा।
और स्टोइक विचारों को मॉडर्न लाइफ में कैसे उतारा जाए, इसके लिए वो काफी जाने जाते हैं। उनकी एक पिछली किताब भी थी, अ गाइड टू द गुड लाइफ, वो भी बहुत पॉपुलर हुई थी।
हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में।
हाँ,
पर दिलचस्प बात यह है कि इरविन सिर्फ वो किताबी बातें नहीं करते,
नहीं नहीं
ऐसा लगता है कि वे खुद इन सिद्धांतों पर चलते हैं,
है ना?
जी हाँ,
यही उनकी खासियत है। वो पुराने ज्ञान को सिर्फ दोहराते नहीं है बल्कि उसे आज की साइकोलॉजी और अपने जीवन के अनुभवों से जोड़कर देखते हैं, और यहाँ तक कि उसमें सुधार भी सुझाते हैं।
हाँ बिल्कुल, उनका नजरिया अकादमिक तो है पर साथ ही साथ बहुत ही प्रैक्टिकल, जमीनी है।
तो संक्षेप में कहें तो ये किताब द स्टोइक चैलेंज एक तरह की मानसिक टूलकिट है।
हाँ कह सकते हैं, एक मेंटल टूलकिट। इसका मकसद है कि हम मुश्किल हालात में लाचार महसूस करने के बजाय ज्यादा फ्लेक्सिबल बने, ज्यादा संतोष पा सकें। यह हमें सिखाती है कि सिचुएशन को देखना कैसे है और उस पे मतलब रिएक्ट कैसे करना है।
अच्छा, तो इस टूलकिट में सबसे जरूरी औजार क्या है? आपने कहा दो बड़े आइडिया हैं इसमें।
हाँ, दो बहुत ही पावरफुल आइडियाज हैं जो हमारी सोच बदल सकते हैं। पहला, इरविन कहते हैं कि जो पारंपरिक स्टोइक सोच है ना कि चीजें या तो हमारे कंट्रोल में हैं या नहीं है।
हाँ, वो डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल।
एग्जैक्टली, वो कहते हैं ये थोड़ा अधूरा है, जिंदगी इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती।
हाँ सही बात है।
यही वो पेश करते हैं नियंत्रण की त्रिपक्षीय व्यवस्था या ट्राइकोटमी ऑफ कंट्रोल। ये हमारी भूमिका को, हमारे रोल को ज्यादा साफ करती है।
अच्छा, त्रिपक्षीय मतलब तीन हिस्से।
हाँ बिल्कुल। इसमें तीन हिस्से हैं। पहला, वो चीजें जिन पर हमारा पूरा कंट्रोल है, जैसे हमारे मूल्य, हमारे फैसले, हम कोशिश कितनी करते हैं, ये सब।
ठीक है।
दूसरा, वो चीजें जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे मौसम कैसा रहेगा या अतीत में क्या हुआ या दूसरे लोग क्या करते हैं।
हाँ वो तो है।
और तीसरा, और ये सबसे जरूरी है शायद, वो चीजें जिन पर हमारा कुछ लेकिन अधूरा कंट्रोल है,
जैसे
जैसे हमारी सेहत हो गई, हमारा करियर, हमारे रिश्ते। इरविन कहते हैं कि जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा इसी तीसरी कैटेगरी में आता है और यही हम सबसे ज्यादा उलझते हैं।
सही कहा, बिल्कुल, यही कंफ्यूजन होता है कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं। और यहीं से फिर दूसरा बड़ा आइडिया आता है, स्टोइक परीक्षण परिकल्पना या स्टोइक टेस्ट हाइपोथेसिस।
हाँ,
अगर त्रिपक्षीय व्यवस्था हमें बताती है कि हमारी भूमिका कहाँ तक है, तो ये परिकल्पना तो हमारे लक्ष्य को ही बदल देती है। ये क्या चीज है?
ये एक कह लीजिए एक मेंटल रीफ्रेमिंग टेक्निक है।
ओके।
इरविन कहते हैं जब भी जिंदगी में कोई रुकावट आए, छोटी हो या बड़ी, उसे ऐसे देखो मानो ये यूनिवर्स ने, या उन्होंने मजाक में स्टोइक देवताओं का नाम लिया है।
हाँ, वो मेटाफोर की तरह इस्तेमाल करते हैं।
बिल्कुल, वो पे असली भगवान नहीं है, तो मानो उन्होंने तुम्हें एक परीक्षा दी है तुम्हारे कैरेक्टर को, तुम्हारे चरित्र को मजबूत करने के लिए।
अच्छा, जैसे?
जैसे मान लीजिए किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी, तो आप सोचें ओके ये मेरे सेल्फ कंट्रोल की, मेरे आत्म संयम की परीक्षा है। या कोई प्रोजेक्ट फेल हो गया तो सोचें चलो ये मेरे धैर्य की और मुश्किलों से जूझने की क्षमता की परीक्षा है।
अरे वाह, मतलब मुश्किल आने पर ये सोचने के बजाय कि हे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ।
हाँ हाँ,
सवाल ये पूछना है मैं इस परीक्षा का सामना सबसे अच्छे तरीके से कैसे कर सकता हूँ।
बिल्कुल,
ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है।
हाँ।
इससे हमारा लक्ष्य बाहरी सफलता से हटकर अंदरूनी गुणों को उनको विकसित करने पे आ जाता है।
हाँ। और ये सिर्फ वो हवा हवाई बातें नहीं है। अरविंद बताते हैं कि पुराने स्टोइक फिलोसोफर जैसे एपिक्टेटस जो खुद गुलाम थे,
हाँ,
या मार्कस ऑरेलियस जो एक सम्राट थे, उन्होंने भी अपनी जिंदगी की भयानक मुश्किलों में इसी तरह के प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया था।
अच्छा।
वो भी समझते थे कि कंट्रोल पूरी तरह से हाँ या ना में नहीं होता।
हाँ।
और ये चीजें आज की साइकोलॉजी से भी जुड़ती हैं, जैसे क्या कहते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, CBT।
हाँ, CBT।
उसमें भी तो यही होता है कि सोच बदल कर आप अपनी फीलिंग्स और बिहेवियर को बदलते हैं।
सही है।
तो फिर इसे असल जिंदगी में लागू कैसे करें, क्या कोई स्टेप्स हैं, कोई तरीका? हाँ, इरविन कुछ प्रैक्टिकल कदम सुझाते हैं, खासकर ये स्टोइक टेस्ट हाइपोथीसिस को अमल में लाने के लिए। पहला कदम है ठहराओ। जब कुछ गड़बड़ हो तो तुरंत रिएक्ट करने से पहले एक पल रुकें, बस एक पल। गहरी सांस लें,
रुकना।
दूसरा, रीफ्रेमिंग। मन में कहें ओके, ये एक परीक्षा है, और पहचानने की कोशिश करें कि ये किस गुण की परीक्षा हो सकती है, धैर्य की, माफ करने की, हिम्मत की।
अच्छा, पहले रुको फिर सोचो कि ये किस चीज की परीक्षा है।
हाँ। और तीसरा है लक्ष्य बदलना, गोल शिफ्ट। अपना ध्यान बाहरी नतीजे से हटा लो। जैसे मान लो फ्लाइट पकड़नी थी वो छूट गई, तो अब लक्ष्य सिर्फ फ्लाइट पकड़ना नहीं है।
तो फिर क्या है?
आंतरिक लक्ष्य पर फोकस करो, जैसे इस सिचुएशन में शांत बने रहना, समझदारी दिखाना। अपनी भूमिका को बाहरी घटना से हटाकर अपनी प्रतिक्रिया पर केंद्रित करो।
इसका कोई उदाहरण सोचे, मान लीजिए किसी की फ्लाइट कैंसिल हो गई।
हाँ, कॉमन प्रॉब्लम है।
तो गुस्सा करने, चिल्लाने के बजाय वो रुकता है, सोचता है ओके, ये मेरे धैर्य और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की परीक्षा है।
हमाई।
अब उसका लक्ष्य सिर्फ अगली फ्लाइट पाना नहीं, बल्कि इस पूरी सिचुएशन को शांति और गरिमा से संभालना है।
सही।
फिर वो शांत दिमाग से देखेगा कि क्या ऑप्शंस हैं। उसकी भूमिका एक लाचार यात्री से बदलकर एक एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर की हो जाती है।
बिल्कुल सही पकड़ा। और ये सिर्फ बड़ी चीजों के लिए नहीं।
अच्छा,
इरविन कहते हैं रोजमर्रा के लिए छोटी छोटी झुंझलाहटें होती है ना, जैसे ट्रैफिक जाम, धीमा इंटरनेट, कोई लेट आ गया।
हाँ, वो तो होती रहती है।
इनको माइक्रो चैलेंजेस कहते हैं। ये हमारे फ्लेक्सिबिलिटी के मसल्स बनाने के लिए छोटी छोटी कसरत की तरह है।
मतलब जिम जाने जैसा।
हाँ, कुछ वैसा ही। इनको धैर्य की या स्वीकार करने की परीक्षा मानकर प्रैक्टिस करें।
ये दिलचस्प है। तो इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं जो हमारी भूमिका और लक्ष्य को समझने में मदद करती हैं।
हाँ, बताइए।
पहली तो यही कि जीवन सिर्फ कंट्रोल में या कंट्रोल से बाहर नहीं है, वो जो बीच का एरिया है ना, जहाँ हमारा थोड़ा कंट्रोल है।
जी, आंशिक नियंत्रण।
हाँ, आंशिक नियंत्रण, उसे समझना और उसमें सही भूमिका निभाना जरूरी है, और ये त्रिपक्षीय व्यवस्था इसी में मदद करती है।
बिल्कुल। और दूसरी बात यह कि घटनाओं का हम पर क्या असर होगा, ये बहुत हद तक इस पर निर्भर करता है कि हम उनके बारे में सोचते कैसे हैं। ये स्टोइक टेस्ट वाली जो रीफ्रेमिंग टेक्निक है, ये हमें मुश्किलों को आपदा की तरह देखने के बजाय परीक्षा की तरह देखने में मदद करती है। इससे हमारा भावनात्मक लक्ष्य बदल जाता है।
सही कहा। और तीसरी बात कि बाधाएं सिर्फ रुकावटें नहीं हैं, बल्कि वो मौके हैं चरित्र को मजबूत करने के, कुछ सीखने के।
हाँ, अवसर।
ये हमारे लक्ष्य को बाहरी सफलता से हटाकर अंदरूनी विकास पर ले आती हैं।
और चौथी कि सच्ची शांति और सेल्फ वर्थ बाहरी नतीजों पर डिपेंड नहीं करती, वो तो अनिश्चित होते हैं।
हाँ।
बल्कि हमारे प्रयासों पर, हमारे गुणों पर निर्भर करती है जो हमारे कंट्रोल में है। यही स्टोइक्स का असली लक्ष्य है, खेल जीतना नहीं बल्कि अपना पार्ट अच्छे से खेलना, स्कोर चाहे जो भी हो।
जैसे भारत में हम देखते हैं ट्रैफिक जैम में गुस्सा करने के बजाय उसे धैर्य की परीक्षा मान सकते हैं।
हाँ, बिल्कुल। या परीक्षा में कम नंबर आ गए तो उसे सीखने का अवसर मान सकते हैं, आलोचना को विनम्रता की परीक्षा मान सकते हैं। किताब में कुछ पंक्तियां या कहूं विचार ऐसे हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं।
जी,
जैसे इरविन का कहना है कि नियंत्रण का द्वंद्व गलत नहीं है, यह अधूरा है। यह हमें याद दिलाता है कि जिंदगी की कॉम्प्लेक्सिटी को स्वीकार करना कितना जरूरी है, खासकर उस बीच वाले एरिया को समझने के लिए जहां हमारी असली भूमिका तय होती है। और वो वाला विचार कि एक बाधा सिर्फ वो नहीं है जो आपके साथ होती है, ये वो चीज है जो आपके लिए हो सकती है यदि आप इसे सही मानसिकता के साथ देखें।
वाह,
ये विक्टिम मेंटालिटी से निकलकर एक एक्टिव रोल अपनाने की बात है। ये पूछता है, इस परीक्षा में आप अपने चरित्र का कौन सा पहलू दिखाना चाहेंगे? ये आपके लक्ष्य को तुरंत बदल देता है।
और एपिक्टेटस का वो सूत्र भी कितना गहरा है, घटनाएं लोगों को परेशान नहीं करती बल्कि उनके बारे में उनके निर्णय परेशान करते हैं।
क्लासिक।
यानी हमारी भावनाएं हमारी व्याख्याओं का नतीजा है। अगर हम अपनी व्याख्या बदल लें तो भावनाएं भी बदल सकती हैं। ये हमारी आंतरिक भूमिका पर कितना जोर देता है।
बिल्कुल, ये सब हमें यही याद दिलाता है कि हर सिचुएशन में हमारे पास कम से कम एक चीज का कंट्रोल तो हमेशा होता है, वो है हमारी प्रतिक्रिया चुनने की आजादी। हमारी भूमिका सिर्फ बाहरी घटनाओं का शिकार बनना नहीं है बल्कि सोच समझ कर प्रतिक्रिया देना है। और हमारा लक्ष्य बाहरी परिस्थितियों को बदलने से ज्यादा अपनी आंतरिक स्थिति को संभालना होना चाहिए।
तो अगर किसी को आज से ही इसे आजमाना हो तो सबसे सरल तरीका क्या होगा, मतलब शुरुआत कैसे करें?
शायद सबसे आसान शुरुआत ये है, अगली बार जब कोई छोटी सी बात परेशान करे, कोई कमेंट हो, ट्रैफिक हो या कोई छोटी सी गलती हो जाए, तो बस एक पल रुकें। गुस्सा या निराशा महसूस करने से पहले खुद से पूछें, क्या ये एक परीक्षा हो सकती है? किस चीज की? धैर्य की? समझ की?
बस इतना?
हाँ, बस इतना सा सवाल पूछना भी आपकी प्रतिक्रिया को बदल सकता है। ये वही पॉज रीफ्रेम वाला कदम है, छोटी शुरुआत।
इस किताब से मेरे लिए जो सबसे बड़ा सबक रहा वो ये कि मन की शांति बाहरी हालात से ज्यादा हमारी अपनी सोच और प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है।
बिल्कुल,
ये जानना कि शांति कहीं बाहर नहीं अपने अंदर ही खोजी जा सकती है, ये अपने आप में बहुत सुकून देने वाला है। इसने मेरी अपनी भूमिका और लक्ष्य को देखने का नजरिया बदला है, सच में।
और मेरे लिए वो त्रिपक्षीय नियंत्रण की जो व्यावहारिकता है ना, वो सबसे खास है। ये जीवन की अनिश्चितताओं को समझने और स्वीकार करने का एक बहुत ही जमीनी तरीका है। और स्टोइक परीक्षण वाला आइडिया ये दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा मानसिक बदलाव हमें ज्यादा मजबूत और शांत बना सकता है। ये हमारी भूमिका को साफ करता है और लक्ष्य को सही दिशा देता है।
तो चलिए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं।
जरूर।
क्या होगा यदि हम जीवन की अगली अप्रत्याशित चुनौती को, चाहे वो कितनी भी छोटी या बड़ी क्यों ना हो, अपने चरित्र को मजबूत करने के लिए एक गुप्त अवसर के रूप में देखने का प्रयास करें? अगर हम ऐसा सोचें तो हम अलग तरीके से क्या करेंगे?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।